हमने मीमांसकों के मत में ये दोष दिया, अनन्वयापत्ति का दोष, कि आपस में जो है ना कारक का कारक में अन्वय नहीं होता। पाक जो कर्म कारक है और अक्तवतु प्रत्यार्थ जो कर्ता कारक है, इन दोनों में आपस में अन्वय नहीं होगा, क्योंकि आपस में अन्वय जो है होता तो है लेकिन बाद में होता है, पहले क्रिया के साथ उसका अन्वय होता है और यहाँ चूंकि क्रिया है ही नहीं तो अन्वय नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुमारिल भट्ट की एक कारिका का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है और इस कारिका के आधार पर कहा जाएगा कि हम अन्वय किसी न किसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे परस्पर कारकों के बीच में। ठीक है, तो उस बात को पहले देखते हैं कि कहा कि नौच, ये नौच को ना हम बाद में रखेंगे, अभी नौच थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, अब कारिका पर आ जाइए। कारिका है कि संबंध मात्रम उक्तंच श्रुत्या धात्वर्थ भावयो हो। श्रुति मतलब वेद, माने वेद में जैसे स्वर्ग कामो यजेता, तो यहाँ पर यजेता जो पद है इसमें दो चीजें हैं, एक तो यज धातु है और दूसरा तो प्रत्यय है, तो इसके द्वारा जो है संबंध मात्रम, केवल संबंध मात्र बताया जाता है। अब जैसे यजेत है तो यज धातु का अर्थ हो गया याग, याग माने यज्ञ, और तो प्रत्यय जो है उसका अर्थ हो गया भावना। जानते हैं ना मीमांसक लोग व्यापार को भावना ही बोलते हैं, तो यज धातु का अर्थ है याग और तो प्रत्यय का अर्थ है भावना, और उसमें संबंध मात्रम उक्तंच श्रुत्या धात्वर्थ भावयो हो। धात्वर्थ जो है याग और भाव जो है माने भावना जो है तो प्रत्यय का अर्थ, उसमें सामान्य संबंध जो है वह होता है और श्रुति के द्वारा वह सामान्य संबंध प्रतिपादित होता है। तो इस तरह से यजेत का अर्थ हो जाएगा याग संबंधिनी भावना, क्योंकि यज का अर्थ हो गया याग, तो प्रत्यय का अर्थ हो गया भावना, और संबंध अर्थ को कौन बताता है, श्रुति बताती है। तो इस तरह से यजेत का अर्थ हो गया याग संबंधिनी भावना। इस तरह से सामान्य संबंध जो है के द्वारा प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ में अन्वय हो सकता है। आपने जो कहा कि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ जो है कर्म और कर्ता कारक, उसमें अन्वय नहीं होगा, ये बात नहीं है। यजेतो में याग संबंधिनी भावना, याग का अन्वय भावना के साथ होता है सामान्य संबंध के आधार पर, उसी तरह से यहाँ भी सामान्य संबंध के आधार पर जो है अन्वय हो जाएगा कि पाक संबंधी कर्ता, ऐसा अन्वय हो जाएगा संबंध सामान्य के आधार पर। तो अनन्वयापत्ति का जो दोष आप दे रहे थे वह दोष नहीं है। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं। तदेकांश निवेशेतु व्यापारोस्यान विद्यते। तत् एकांश निवेशे, तत् से पकड़ना है संबंध को, उसका जो एक अंश है। तो संबंध दो प्रकार का होता है, एक है सामान्य संबंध और एक होता है विशेष संबंध। तो श्रुति के द्वारा जो है वेद के द्वारा सामान्य संबंध को ही बताया जाता है, विशेष संबंध को बताने में उसका व्यापार नहीं होता है, वेद का श्रुति का व्यापार नहीं होता। व्यापार अस्याह न, अस्याह माने श्रुत्याह, माने श्रुति का व्यापार नहीं होता है, व्यापार मतलब विधान। तो श्रुति जो है एकांश का विधान नहीं करता, एकांश माने विशेष संबंध का विधान नहीं करता, केवल सामान्य संबंध का ही विधान करता है। तत् एकांश, एकांश का अर्थ करना है विशेष संबंध, और तत् से पकड़ना है सामान्य संबंध को, कि सामान्य संबंध का जो एक अंश है माने विशेष संबंध है, उसके निवेश में, निवेश का अर्थ यहाँ बोध कर लीजिए, कि उसके बोध कराने के लिए व्यापार अस्याह श्रुत्याह न विद्यते, श्रुति का जो है इसमें व्यापार नहीं होता, श्रुति का विधान, श्रुति के द्वारा विधान नहीं होता। तात्पर्य ये निकला कि सामान्य संबंध को आधार मान करके हम परस्पर अन्वय कर सकते हैं, जैसे यजेतो में यज प्रकृत्यर्थ है याग, तो प्रत्यार्थ है भावना, और सामान्य संबंध से अन्वय करते हैं याग संबंधिनी भावना। उसी तरह से यहाँ पर पक्वमान में भी पाक का जो कर्म कारक है उसका अन्वय अक्तवतु प्रत्यार्थ कर्त्य कारक में करेंगे, और अर्थ हो जाएगा कि पाक संबंधी कर्ता। वही आगे कहते इति भट्ट पादोक्त रीत्या, भट्ट पाद हो गए कुमारिल भट्ट, उनकी रीति से, यहाँ इस कारिका में जो उन्होंने रीति बताई है, तरीका बताया है, उससे संबंध सामान्य न कारका नाम अन्वय, सामान्य संबंध के आधार पर परस्पर कारकों में अन्वय हो जाएगा। मैंने कहा था ना नौ चौको, अभी छोड़िए, अब नौ चौको यहाँ लगा लीजिए, संख्या है ना, इसके पहले नौ लगा दीजिए, इति नौ संख्या, इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो योग्यता विरहात, कहा कि अन्वय होने के लिए आकांक्षा होना जरूरी है, योग्यता होना जरूरी है, तो यहाँ पर जो है योग्यता का विरह है, विरह का अर्थ होता है अभाव, तो योग्यता का अभाव होने के कारण यहाँ पर पाक कर्म कारक का अक्तवतु प्रत्यार्थ कर्त कारक के साथ अन्वय नहीं होगा, क्योंकि योग्यता का अभाव है। यजेतों में योग्यता थी, यज का जो अर्थ प्रकृत्यर्थ याग था, उसकी योग्यता जो है तो प्रत्यार्थ भावना में अन्वय होने के लिए योग्यता थी, इसलिए वहाँ पर सामान्य संबंध के आधार पर अन्वय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस योग्यता का अभाव है, इसीलिए साधबोध नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि योग्यता का अभाव क्यों है, ये योग्यता कहाँ रहती है, हैं, जो चीज की यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए आगे कहते हैं कि अन्वय प्रयोजक रूपवत्वस्य तथात्वात्, माने अन्वय का जो प्रयोजक है, रूप है, अन्वय का प्रयोजक रूप मतलब, प्रयोजक मतलब प्रेरक, माने कहाँ पर अन्वय होना चाहिए, कहाँ पर अन्वय नहीं होना चाहिए, इसका जो धर्म है उसी को कहते हैं अन्वय प्रयोजक रूप। माने कोई धर्म, किसी वस्तु में रहने वाला ऐसा धर्म, वह धर्म ही निर्धारित करता है कि अन्वय होगा कि नहीं होगा, होगा तो किसके साथ होगा, तो वह जो धर्म है अन्वय प्रयोजक रूप, उस रूप वत्व का यहाँ पर अभाव है। कहाँ पर? पाक कर्म कारक में और अक्तु प्रत्यार्थ कर्ता कारक में। तो मैंने जो सवाल खड़ा किया था कि योग्यता के अभाव से जो है यहाँ पर कर्म और कर्ता का परस्पर अन्वय नहीं होगा, सवाल किया था कि वह योग्यता कहाँ रहती है, तो वह योग्यता अब समझ लीजिए कि अन्वय प्रयोजक रूपवत्व जहाँ रहता है वहीं पर वह योग्यता रहती है। यह अन्वय प्रयोजक रूपवत्व, मैंने पहले भी कभी कहा होगा कि जहाँ पर वत्व लगा हो ना उसको हटा लीजिए, जो बच जाए उसको रख लीजिए, यहाँ पर करिए तो अन्वय प्रयोजक रूपस्य ऐसा होगा, वत्व हटा देंगे, माने अन्वय प्रयोजक रूप जो है जहाँ रहेगा वहाँ योग्यता रहेगी, यहाँ पर अन्वय प्रयोजक रूप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर साधबोध या अन्वय नहीं हो पाएगा। ऐसे वत्वस्य लगा करके अगर हम अर्थ करना चाहें तो वो भी कर लें, अन्वय प्रयोजक रूप बाण जो है, बाण कहते हैं युक्त को, तो अन्वय प्रयोजक रूप से जो युक्त है वह क्या हो गया, अन्वय प्रयोजक रूप बाण, और अन्वय प्रयोजक रूप बाण में जो त्व है माने उसमें रहने वाला जो धर्म है वह हो गया अन्वय प्रयोजक रूपवत्व। तो यह अन्वय रूप, अन्वय प्रयोजक रूपवत्व जिसमें है उसी में योग्यता रहती है अन्वय होने की, यह अन्वय प्रयोजक रूपवत्व जिसमें नहीं रहेगा उसमें योग्यता नहीं रहेगी। अब फिर से मन में प्रश्न आएगा कि ये अन्वय प्रयोजक रूपवत्व कैसा होता है, तो इसको ये समझिए, आगे लिखते हैं कि क्रियान्वयित्वम एव, क्रियान्वयित्व धर्म जो है वही है अन्वय प्रयोजक रूप, ठीक है, और यह क्रियान्वयित्व जिसमें होगा उसी में जो है ना अन्वय की योग्यता रहेगी। तो जिस कारक में क्रियान्वयित्व रूप अन्वय प्रयोजक धर्म होगा उस कारक का ही अन्वय होगा, जिसमें क्रियान्वयित्व नहीं रहेगा उसमें कारक का कारक के साथ अन्वय नहीं होगा। इसी बात को कहते हैं कि क्रियान्वयित्वम एव ही कारकान्वयिता वच्छेदकम इति वक्ष्यते, आगे हम कभी बताएंगे खास करके सुबंत प्रकरण में कि कारकान्वयिता वच्छेदक कौन होता है, तो क्रियान्वयित्वम होता है। अब ये कारकान्वयिता वच्छेदकम शब्द सुन के घबराना नहीं है, कारक तो जानते ही हैं, कर्ता कर्म करण ये सब कारक होते हैं, उसका जो अन्वयी है, एक बात बताइए कि अन्वय माने होता है संबंध, तो अन्वयी माने क्या होगा, स्वाभाविक संबंधी, तो कारक का जो अन्वयी है माने कारक का जो संबंधी है, ठीक, तो उस कारक के संबंधी में रहने वाला जो ता है, ता क्या होता है, तो त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय का अर्थ होता है भाव, तो कारक के संबंधी में रहने वाला जो भाव है वह हो गया कारकान्वयिता, और उस भाव का जो अवच्छेदक धर्म होगा, अवच्छेदक माने एक से दूसरे को अलग करने वाला धर्म, तो कारकान्वयिता अवच्छेदक मतलब हुआ कारक के संबंधी में रहने वाला धर्म, ऐसा धर्म जो कि कहाँ अन्वय हो कहाँ अन्वय नहीं हो इसका निर्धारण करता हो, उसी को कहते हैं कारकान्वयिता अवच्छेदक। फिर से सुन लीजिए, कारक के अन्वयी में अर्थात कारक के संबंधी में रहने वाला ऐसा धर्म जो कि निर्धारित करता हो कि कहाँ पर कारक का अन्वय होगा कहाँ पर कारक का अन्वय नहीं होगा, ऐसा जो निर्धारक धर्म है कारक के संबंधी में रहने वाला जो निर्धारक धर्म है निर्णायक धर्म है उसी को कहते हैं कारकान्वयिता अवच्छेदक। और वह कारकान्वयिता अवच्छेदक वह निर्धारक धर्म कौन है निर्णायक धर्म कौन है, तो वह है क्रियान्वयित्वम, माने क्रिया में अन्वयी होना क्रिया में क्रिया से संबंधी होना जो है वही कारकान्वयिता अवच्छेदक धर्म होता है। तो यह क्रियान्वयित्व जिसमें होगा माने जहां पर कारक का अन्वय क्रिया में होगा उसकी वहीं पर जो है कारक का कारक के साथ परस्पर अन्वय होगा, अगर क्रियान्वयित्व नहीं है तो वहां पर कारक का कारक के साथ अन्वय नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो अन्वय प्रयोजक जो रूप होता है जो पीछे चर्चा आई थी कि अन्वय प्रयोजक रूपवत्व से अभावात, अन्वय प्रयोजक रूपवत्व नहीं है इसलिए योग्यता नहीं है और योग्यता नहीं है तो साध बोध नहीं होगा, तो वह अन्वय प्रयोजक रूपवत्व यही है क्रियान्वयित्वम, इसी को कारकान्वयिता अवच्छेदकम भी कहते हैं। तो यह क्रियान्वयित्व यहाँ पर पक्वान में नहीं है इसीलिए कर्ता और कर्म का सामान्य संबंध के आधार पर भी अन्वय नहीं होगा। तदेतत आविष्कर्तुम, इसी बात को आविष्कृत करने के लिए इसी बात को जो है प्रकाश में लाने के लिए विवरणे न विवरण के द्वारा धात्वर्थ अक्त्वर्थयो हो कर्मत्व कर्तृत्व दर्शयति, धात्वर्थ जो यहाँ पर पाक कर्म है और अक्त्वर्थ जो कर्ता है उसको दर्शयति माने दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं कारिका में कि कृतमान पाकम इति, वो था ना कि पकवान कृतमान पाकम, तो ये जो पकवान का विवरण क्या कृतमान पाकम, कृतमान के द्वारा कर्ता अर्थ को बताया अक्तवतु के अर्थ को और पाकम के द्वारा जो है धातु के अर्थ को बताया। अब वस्तुतः करके जो है सिद्धांत बता रहे हैं, क्योंकि अब ये जो न्याय है कि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ अगर रहेगा तो वहाँ पर प्रत्यार्थ की प्रधानता होगी, ये भी तो न्याय है ही, ये भी शास्त्र सम्मत बात है। तो इस और उसके बाद जो है ना खंडन कर दिया कि ये चीज मानेंगे तो फिर पकवान में जो है अन्वय ही नहीं होगा, प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ में कर्म और कर्ता में परस्पर अन्वय नहीं होगा, तो मन में प्रश्न तो ये उठेगा ही कि ये इस न्याय का वास्तविक मतलब क्या है। तो वास्तविक मतलब आगे बताने के लिए कहते हैं, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट भी है, कहते हैं कि वस्तुतः प्रत्यार्थ प्रधानम, ये जो कहा गया है ना कि प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है अर्थात विशेष होता है, इसका अर्थ जो है ना गलत आप लोग लगा रहे हैं। आप इसका क्या अर्थ लगा रहे हैं तो क्या किया है इसमें एक यह और सह, तो एक बार यह लगा लीजिए प्रत्यार्थ में और सह लगा लीजिए प्रधानम में, और एक बार इसका उल्टा कर लीजिए, सह लगा लीजिए प्रत्यार्थ में और यह लगा लीजिए प्रधानम में। तो अब देखिए मैं दोनों तरीके से उसको बोलता हूँ, यह प्रत्ययार्थ सह प्रधानम, अब उल्टा कर दीजिए यह प्रधानम सह प्रत्ययार्थ, इस तरह से हम अर्थ करते हैं इस न्याय का कि जो प्रत्ययार्थ है वही वह प्रधान है अथवा जो प्रधान है वह प्रत्ययार्थ है, इस तरह से जो हम अर्थ करते हैं ना ये गलत अर्थ, वही आगे कह रहे हैं वस्तुतः प्रत्यार्थ प्रधानम इत्यस्य, ये जो न्याय का अंश है प्रत्यार्थ प्रधानम, इसका यह प्रधानम सह प्रत्यार्थ एव, जो प्रधान होता है वह प्रत्यय का अर्थ ही होता है इति वा, अथवा यह प्रत्यार्थ सह प्रधानम एव इति वा, माने जो प्रत्यार्थ होता है वह प्रधान ही होता है इति नो अर्थ, इस तरह से इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ताकि अच्छा शब्द में तो ऐसा ही लगता है प्रत्यर्थ प्रधानम, क्लियर कट कह रहा है कि प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, और आप कहते हैं कि इस तरह का अर्थ नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए जी? तो आगे दोष देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ करेंगे कि यह प्रत्यर्थ सह प्रधानम अथवा यह यत प्रधानम सह प्रत्यर्थ, तो फिर अजा अश्वा छागी इन सबों में दोष होगा। आप पहले जान लीजिए कि अजा अश्वा छागी का मतलब अर्थ क्या होता है। अजा का अर्थ होता है स्त्रीत्व विशिष्ट अजा, अश्वा का अर्थ होता है स्त्रीत्व विशिष्ट अश्वा, छागी का अर्थ होता है स्त्रीत्व विशिष्ट छागी। या विशिष्ट अगर हटा भी दें, अत्व हटा दें, तो सीधे आप ये भी कह सकते हैं अजा का अर्थ हो गया स्त्री अजा, अश्वा का अर्थ हो गया स्त्री अश्वा, छागी का अर्थ हो गया स्त्री छागी। अब इसमें आप जानते हैं ना, विशेषण पहले होता है, विशेष बाद में होता है। तो अजा का अर्थ हुआ स्त्री अजा, तो स्त्री जो प्रत्यय का अर्थ है, माने ताप प्रत्यय का अर्थ है स्त्री, वह विशेषण है, है, और प्रकृति जो है अज, उसका अर्थ जो है वह विशेष्य है। तो इस तरह से ये सिद्धांत है, अजा का अर्थ होता है स्त्री अजा, अश्वा का अर्थ होता है स्त्री अश्वा, छागी का अर्थ होता है स्त्री छागी। इसमें प्रत्यार्थ जो है ताप प्रत्यय का जो अर्थ है वह विशेषण है, और प्रकृत्यर्थ जो है अज अश्व और छाग, ये जो है विशेष्य है। अब अगर ये प्रत्यार्थ प्रधानम का उस तरह से अर्थ करेंगे कि जो प्रधान होता है वह प्रत्यार्थ होता है, और जो प्रत्यार्थ होता है वह प्रधान होता है, तो यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ क्या है? स्त्री है ताप प्रत्यय का अर्थ या नीस प्रत्यय का अर्थ, तो वही प्रधान होगा। अब उल्टा अर्थ हो जाए, क्या पहले हम अर्थ करते थे स्त्री अजा, अब अर्थ क्या हो जाएगा कि अजा स्त्री अर्थ हो जाएगा, फिर और अश्वा स्त्री अर्थ हो जाएगा, छागी का छागी स्त्री अर्थ हो जाएगा। इस तरह से अर्थ बनने, अगर इसको और कहें समझने के लिए, तो अजा जाति वाली स्त्री, अश्व जाति वाली स्त्री, छाग जाति वाली स्त्री, ऐसा बोध होने लगेगा, क्योंकि स्त्री का अर्थ प्रत्यार्थ है, वही प्रधान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि स्त्री अजा, स्त्री अश्वा, स्त्री छागी, ऐसा बोध होता है। तो वही कह रहे हैं, अगर आप हर जगह जो है प्रत्ययार्थ प्रधान मानने लगेंगे, तो अजा अश्वा छागी में भी स्त्री का प्रत्यय अर्थ जो है, स्त्री प्रत्यय का जो अर्थ है स्त्रीत्व, उसके प्रधानता की आपत्ति आएगी, माने वही प्रधान होने लगेगा। छाग्यादेह अनापत्यश्च, और अजा अश्वा छागी की जो प्रधानता होनी चाहिए उसकी अनापत्ति होगी, माने वह प्रधानता नहीं हो पाएगी। किंतु उत्सर्गोयम, यह जो प्रत्यार्थ प्रधानम न्याय कहता है ना, यह उत्सर्ग वाक्य है, माने ये एक सामान्य सिद्धांत है, जनरल रूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ऐसा होता ही होता है। विशेषत्वादिना बोधस्तु तथा व्युत्पत्त्यनुरोधात्, कहाँ पर जो है प्रत्यय का अर्थ विशेष बने, कहाँ पर न बने, इसमें व्युत्पत्ति कारण होता है। व्युत्पत्ति के अनुरोध से ही ये निर्भर करता है कि कहाँ पर प्रत्यार्थ विशेष बनेगा, कहाँ पर प्रत्यार्थ विशेष नहीं बनेगा। यह जो है प्रत्यार्थ प्रधानम, ये उत्सर्ग है, यह एक जो है ना सामान्य सा नियम है, इसको हर जगह फॉलो नहीं करना है। इस तरह से इन्होंने वस्तु तस्तु कह करके बताया। तो हमने भी यही समझा कि यद्यपि ये नियम तो है कि प्रत्यर्थ प्रत्यार्थ के बीच में प्रत्यार्थ प्रधान होता है, लेकिन यह नियम हर जगह लागू नहीं होता, क्योंकि हर जगह लागू करेंगे तो अजा अश्वा छागी में दोष हो जाएगा। इसका अर्थ होने लगेगा कि अजा जाति वाली स्त्री, अश्व जाति वाली स्त्री, छाग जाति वाली स्त्री, इस तरह अर्थ होने लगेगा, जो कि अर्थ कोई नहीं मानता है। इसलिए यह सामान्य नियम है, और वास्तविक में तो कहाँ पर यह विशेष बने प्रत्यार्थ, कहाँ पर न बने, इसके लिए व्युत्पत्ति कारण होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर ही ये निर्धारण होता है। तो आज का पाठ यहीं पर ब्रेक करते हैं।